ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ब्राह्मण वर्ग
भगवान के
मुख का
क्षत्रिय
उनकी
भुजाओं का
और वैश्य
उनकी जांघों का
प्रतिनिधित्व
करते हैं,
जबकि
शूद्र वर्ग
उनके पांव से उत्पन्न हुआ है।
तात्पर्य
दिवाइन
श्रील प्रभुपाद
की
सारे जीव भगवान के अंश बताए जाते हैं।
इस श्लोक में बताया गया है कि वे किस तरह
मानव समाज के चार विभाग हैं,
बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण,
प्रशासक वर्ग
क्षत्रिय,
व्यापारी वर्ग
वैश्य
तथा श्रमिक वर्ग
शूद्र।
ये सब भगवान
के शरीर के
विविध अंग हैं
और
इस तरह कोई भी
वर्ग भगवान
से भिन्न नहीं है।
मुंह
तथा पांव
स्वाभाविक दृष्टि
से शरीर से
अभिन्न है,
किंतु
शरीर में गुण की
दृष्टि से
मुंह या सिर
पांव से अधिक
महत्वपूर्ण है,
लेकिन
साथ ही साथ मुंह
पांव भुजाएं
तथा जांघें
शरीर के
अवयव हैं।
भगवान
के शरीर के अंग
परम पूर्ण
सेवा के निमित्त
हैं। मुंह
बोलने तथा
खाने के लिए,
भुजाएं
शरीर के रक्षा
के लिए,
पांव
शरीर को इधर
उधर ले जाने के
लिए होते हैं
तथा कमर
शरीर का पालन
करने के लिए होती
है। अतः
समाज के बुद्धिमान
वर्ग को
विराट रूप
का मुख होने के
नाते बोलना
चाहिए और
शरीर को शुद्धा तृप्ति
के लिए भोजन
भी करना चाहिए।
भगवान की
शुद्धा यज्ञ के
फल को ग्रहण
करना है।
बुद्धिमान
वर्ग या ब्राह्मणों
को ऐसे यज्ञ
संपन्न करने में अत्यंत
कुशल होना चाहिए
और अधीन
वर्गों को
चाहिए कि ऐसे
यज्ञों में
हाथ बटाएं।
परमेश्वर
के विषय में बोलने
का अर्थ है
भगवान के
ज्ञान का
यथारूप प्रचार
करके भगवान
का महिमा
गान करना।
भगवान
की वास्तविक
प्रकृति
एवं उनके संपूर्ण
शरीर के सभी
अंगों
का वास्तविक
स्थिति का प्रचार
करना।
इसलिए
ब्राह्मणों
को ज्ञान
के चरम स्रोत
वेदों का
जानना चाहिए।
वेद का
अर्थ है ज्ञान
तथा
अंत का अर्थ है
उसका छोर।
भगवत गीता
के अनुसार
भगवान समस्त
वस्तुओं के
स्रोत हैं,
अहम
सर्वस्व
प्रभव,
और इस तरह
ज्ञान का अंत
वेदांत।
भगवान को
जानने,
भगवान
के साथ अपने
संबंध को
जानने
तथा केवल
इस संबंध के
अनुसार ही
कार्य करने में है।
जिस तरह
शरीर के अंग
शरीर से
संबंधित होते
हैं, उसी
प्रकार जीव को
भगवान के साथ
अपना संबंध
जानना चाहिए।
मनुष्य
जीवन विशेष रूप
से
इसी प्रयोजन
के लिए अर्थात
पर
भगवान के साथ
अपने संबंध को
जानने के लिए मिला
है।
इस संबंध
को जाने बिना
मनुष्य जीवन
व्यर्थ है।
इसलिए
बुद्धिमान वर्ग के
लोगों
या ब्राह्मणों
का विशेष उत्तरदायित्व
है कि भगवान
के साथ
हमारे इस संबंध का
प्रसार करें
और
सामान्य जनता को
सही मार्ग पर
लाएं।
प्रशासक वर्ग
जीवों की रक्षा
के निमित्त है,
जिसे सारे जीव
इस प्रयोजन में
सफल रहे।
व्यापारी
वर्ग अन्न
उत्पन्न करने तथा
उसे
सारे समाज में
वितरित करने के
लिए है,
जिससे सारी
जनता का अवसर
मिले कि
वह सुखपूर्वक
रह सके
और
मनुष्य जीवन के
कर्तव्यों को
निभा सके।
व्यापारी
वर्ग का यह भी
दायित्व है कि
वह गायों को
सुरक्षा प्रदान
करे, जिससे
पर्याप्त दूध
तथा दूध
उत्पादन
प्राप्त हो।
इन्हीं के
समुचित स्वास्थ्य
तथा बुद्धि
प्राप्त हो सकती है,
जो परम सत्य
के ज्ञान के
निमित्त सभ्यता
को स्थापित
रखने में
समर्थ है।
श्रमिक
वर्ग जो ना तो
बुद्धिमान होता है,
न शक्तिमान,
न अन्य
उच्चतर वर्गों की
सेवा करके
सहायता पहुंचा सकता
है,
उनके सहयोग
से लाभान्वित भी हो
सकता है।
अतएव ये ब्रह्मांड
भगवान
के परिपेक्ष
में एक पूर्ण
इकाई है।
भगवान
के साथ इस संबंध
के अभाव
में सारा
मानव समाज
अस्त व्यस्त
रहता है
तथा उसमें
शांति
तथा संपन्नता
नहीं रहती।
इसकी
पुष्टि
वेदों में भी
हुई है।
ब्राह्मणस्य
मुखम
असीदम
बाहुराज्यम
कृतः।
भगवान
वेदों में
ऐसा वर्णन करते
हैं।
ओम अज्ञान
तिरंधस्य
ज्ञानंजनाशलाकय
चक्षुरुन्मीलितं
येन
तस्मै
श्रीगुर्वे
नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं
येन भूतले
स्वयं
रूपं
कदामयं
ददाति
स्वकथान्वितं
वन्देहां
श्रीगुरु
श्रीपादकमलम्
श्रीरूपं
साग्रजातं
सहगणं
रघुनाथान्वितं
तं
सजीवं
सावेतं
सावधूतं
परिजनसहितं
कृष्णचैतन्यदेवं
श्रीराधाकृष्णापादान्
सहगणं
ललिता
श्रीविशाखान्वितां
हे कृष्ण
करुणासिन्धो
जानते हैं जितने भी अलवर्स है, जैसे हमारे गोस्वामी हैं, ऐसे रामानुज संप्रदाय जो श्री संप्रदाय, उसमें अलवर्स है जो कि भगवान के विभिन्न आयुधों को प्रकट लेकर हुए थे, जैसे सुदर्शन चक्र, कमल, गदा। तो ऐसे जो अलवर थे वो जहां भी आप जाएंगे उनके दर्शन मिलेंगे। और उन्होंने तकरीबन साउथ इंडिया में आपको 90 दिव्य देश मिल जाएंगे जहां पर उनके विभिन्न प्रकार के अवतरण है। तो उसमें से पूरे हिंदुस्तान में घूमे तो 104 हो सकते हैं, लेकिन दो देखने के लिए आपको स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इतने तीर्थ, इतने दिव्य देश है, अगर हम भ्रमण करने निकल जाए तो इस जीवन में मुश्किल लगता है कि कैसे सभी जगह जा पाएंगे, है कि मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है। तो साधारण तरीका क्या है, सरल तरीका क्या है, इसको सुने पढ़े तो सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बताते हैं भागवत की चर्चा में आता है स्कंद पुराण में कि एक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण के पिताजी जो थे वो श्रीमद् भागवत उनको देकर गए अपने अंतर शिशिर कुंड द्वार प्रदेश जगन्नाथ प्रदेश शिशिर। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस प्रकार से एक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण अपने बेटे को बोल के गए कि बेटा ये श्रीमद् भागवत को पढ़ा करो, अपने जीवन का अंतिम जो है ना ध्येय, टारगेट ऑफ लाइफ भागवत होना चाहिए। और ऐसे भी कई लोग देखे गए हैं जो कि श्रीमद् भागवत से इतना प्रेम करते हैं कि अपने अंत समय में, जैसे चर्चित में होता है जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके कॉफिन बॉक्स में वो सारी चीजें रखते हैं जो उसको अगले जन्म में इस्तेमाल में। तो इसे कई वैष्णव कहते हैं कि जब मैं जाऊं तो क्या करना, मेरी इस छाती पर क्या रख देना, श्रीमद् भागवत को। ये जो कि अमलम पुराण है, लोगों को इस भवसागर से पार करा सकती है ना। तो अगर मैंने कुछ भी गलत कर्म किए होंगे, अगर ये भागवत के स्पर्श के साथ में चला गया तो मैं भागवत धाम चला जाऊंगा, ऐसा वैष्णवों का औचित मतलब उनका सोच होती है, इतना उनका समर्पण होता है श्रीमद् भागवत। तो ये ब्राह्मण जो था इसको इतना फेथ नहीं था अपने पिता की वाणी, उसने मान तो लिया मेरे पिताजी बोल के गए, तो भागवत को उठा के घर में जैसे हम लोग रखते हैं भगवत गीता को अपने घर में कैसे रखते हैं, यथारूप जैसी आई वैसी की वैसी आ जाती है। मेरे ग्रैंड मदर को भगवत गीता मिली थी 1985 में, प्रभुपाद जी का वर्जन है ना, और मेरे को उन्होंने दिया, मैं तो 5 वर्ष का था और ना दादी ने पढ़ा ना मेरे पिताजी ने पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा उसको 2002 में जाकर। सोचिए कि अगर फेथ हो जाए अपने शास्त्रों में तो हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फेथ नहीं होता। उस ब्राह्मण को भी फेथ नहीं था और वो निकल गया वहां से और जाकर के अपने परिवार को कहते हैं, सभी जगह होता है, ज्यादातर लोग ज्यादा फोकस करते हैं चार धाम यात्रा, तीर्थ यात्रा, रामेश्वरम जाना है, घर में भगवदगीता पढ़ी है, नहीं जीवनी पढ़ी है, चार धाम करके आए हैं। तो चार धाम करने और तीर्थ यात्रा करने को निकल गया और जब वो बनारस पहुंचा तो बनारस में एक भक्त थे जो कि श्रीमद् भागवत को पढ़ा करते थे और गंगा के किनारे रहकर भी गंगा स्नान नहीं करते थे, कह रहे टाइम नहीं है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं जब वो राधा दामोदर मंदिर में थे तो कई बार प्रभुपाद मंगला आरती नहीं जा पाते थे क्योंकि इतना सारा ट्रांसलेशन काम है, अगर मंगला आरती जाए आए तो बहुत सारी सेवा रुकती है, तो प्रभुपाद जी जो गेट से दर्शन कर लेते हैं या फिर अगर जाएंगे तो सिर्फ प्रणाम करके तुरंत आएंगे क्योंकि बहुत सारी सेवा करनी है और फिर जप करते करते भी ध्यान रहता था, वो हाइयर स्टेट है हमारे लिए नहीं है। लेकिन इस प्रकार से सारे भक्त बहुत ही जगह उनका समर्पण होता है तो इस प्रकार की वो प्रक्रिया करते हैं। तो वो ब्राह्मण जो थे श्रीमद् भागवत को पढ़ते रहते थे हर टाइम और कभी गंगा स्नान करने भी नहीं गए। और ये ब्राह्मण जो कि दूर देश से आया, जिसके पिता ने कहा श्रीमद् भागवत ही सार है, घूमता फिरता तीर्थ यात्रा करता बनारस जा रहे हैं जी, और बनारस जाके बिंदु माधव जी का दर्शन करेंगे जी, वहां पहुंच गए, दर्शन किया, लेकिन देखा कि सारे के सारे लोग सीढ़ियों से चढ़ते हुए चले आ रहे हैं, क्या यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, ये लोग कहाँ से गीले होके आ रहे हैं। तो पूछ रहा है उसे कि गंगा जी कहाँ बहती है, कहा गंगा नहीं दिख रही तुमको, अरे अंधेरा है, वो देखो क्या अलग अलग पानी भरा हुआ है, बहता चला जा रहा है। कहा मैं बहुत दूर से पैदल चल करके आया हूँ, जमाने में ट्रेन गाड़ी सब नहीं थी, पैदल चलकर आया हूँ पर गंगा जी का दर्शन नहीं हो रहा, कहाँ है गंगा जी। अब बोरी देखो लबालब बह रही है, हमारे वस्त्र गीले हैं, हम गमछा आदि पहनकर आए हैं, वो देखिए सामने मुझको दर्शन नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि मुझको दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अब इसने जब बहुत ही दुखी था तो उन्होंने पूछा कि भाई जाओ आप ना एक काम करो, वो सामने कुटिया है ना, वो बता सकते आपको दर्शन क्यों नहीं हो रहा गंगा जी का। ये चला गया वहां पर, वहां जाकर देखा तो वहां वेटिंग जैसे होता है ना डॉक्टर के पास में वेटिंग होती है टोकन लेकर लंबे लंबे टाइम, तो जाकर देखा वहां पर काफी सारी स्त्रियां, सुंदर सुंदर स्त्री, सुंदर सुंदर पुरुष, और साथ में एक सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए एक स्त्री खड़ी हुई है वहां पर, तो ये भी लाइन में खड़ा हो गया। पूछा भाई वो आगे जो खड़ी है बहुत सुंदर थी स्त्री कौन? बोले गंगा जी। कही गंगा जी है? वो गंगा जी तो पानी होता है, कहा पर्सोनिफिकेशन ऑफ गंगा, मतलब गंगा जब एक स्त्री रूप लेती है तो ये इस तरह की दिखाई देती है, मकर वाहिनी गंगा, मगरमच्छ वाहन करके मगरमच्छ के ऊपर चलते उनका वाहन है। तो अच्छा ये है, दर्शन कर लिए दूर से। अब अंदर गया, अंदर जाकर के देखा तो ये जो व्यक्ति था अंदर बैठा था ये कुछ नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था? श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा था। तो बाकी देवी देवता जो थे, जो 33 करोड़ देवी देवता जो अलग अलग तीर्थों के प्रमाणित उनको आदित्य दिया गया है नेतृत्व करने के लिए, अधिपत्य है उनका, वो सभी किसका दर्शन करने आए थे? जो कि भागवत। ये गया इसने जाकर के प्रणाम किया, जब इसका नंबर पूछा कि इतने सारे लोग कौन थे इतने सुंदर सुंदर, तो उसने बताया कि सभी आते हैं रोज, मैं जैसे ही पाठ शुरू करता हूँ श्रीमद् भागवत का उच्चारण ही करता हूँ तभी क्या हो जाता है तुरंत सभी देवी देवता आकर के वहां विराजमान हो जाते हैं, है ना। तो कहा कि मैं आया हूँ इतनी दूर से, मुझे गंगा का दर्शन नहीं हो, क्या ऐसा मुझसे हो गया कि मुझे आज गंगा में गंगा का दर्शन नहीं हो? कहा तुमसे और पूछने वा, तुमने श्रीमद् भागवत को एक सरल पुस्तक समझ लिया, तुमने सोचा कि जैसे और पुस्तकें हैं ऐसे ही ये भी एक पुस्तक है, तो श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवत स्वयं में भगवान कृष्ण। अगर कोई व्यक्ति ये समझ करके पढ़ेगा तो आपको पता ही 33 करोड़ देवी देवता उस व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं जिसने कृष्ण शरणागत किया है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि रोज श्रीमद् भागवत कक्षा में क्या करो, जोर जोर से श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, हम करते ना 3 बार 4 बार 5 बार। तो ये कोई इस्कॉन का पैटर्न नहीं है, ये शास्त्रिक पैटर्न है कि हम जितना ज्यादा अगर भागवत पढ़ते भी हैं घर पे तो हम कुछ श्लोकों को कम से कम एक श्लोक को रोज जोर से उच्चारण करना चाहिए। ये है पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा शत, पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा,
पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा,
शत्रुमेतस्य बाहवा,
शत्रुमेतस्य बाहवा,
उर्वो वेश्यो भागवता,
उर्वो वेश्यो भागवता,
अद्भयां शूद्रो व्यजाय,
अद्भयां शूद्रो व्यजाय।
तो इस तरह से जोर से उच्चारण करने से क्या होता है, तो नींद छूट जाती है मंगलारती करने, और दूसरा क्या हो जाता है इससे हमारा क्या होता है शुद्धिकरण होता है और भगवान प्रसन्न होता है। सबसे उत्तम चीज जिसके लिए हम सब काम करते हैं भगवान प्रति प्रसन्नता हेतु, और कोई हेतु नहीं, बस एक ही हेतु भगवान की प्रसन्नता है। तो यहाँ पर बताया गया कि भगवान के शरीर से 4 प्रकार के लोग उत्पन्न होते हैं, भगवान के मस्तिष्क से बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं, क्षत्रिय भगवान के बाजुओं से प्रशासक वर्ग उत्पन्न होता है, वैश्य भगवान के जांघों से और उदक के हिस्से से उत्पन्न होते हैं व्यापारी वर्ग, और श्रमिक वर्ग शूद्र भगवान के निचले हिस्से टांगों से उत्पन्न होते हैं। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि भगवान का सर खराब है और पैर अच्छा या पैर खराब हो सकता है, भगवान पूर्ण रूप से अच्छे हैं परंतु सबका अलग अलग एक नेचर है, तो हमको अपना स्वभाव जानना चाहिए। और यहाँ बताया गया कि किस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनके अलग 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 प्रकार के कैसे ये होते हैं और इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, जैसा गीता जी में श्रीमद् भगवद गीता में इसका वर्णन है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्रणाम च परंतपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। तो भगवान ने 2 जगह कहा भगवत गीता के अंदर, एक तो भगवान ने कहा चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभागश, एक तो भगवान ने बोला मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं किसके आधार पर, गुण और कर्मों के, जैसे गुण होंगे वो व्यक्ति वैसा, जैसे अभी हो सकता है कोई व्यक्ति लिखता हो अपने नाम के आगे मेरा नाम है रोहित शर्मा, मैं कौन हूँ, शर्मा हूँ ब्राह्मण, लेकिन वो काम करता है ऑफिस जाता है और ऑफिस में या फिर बिजनेस करता है, तो उसका जो कार्य है गुण है जो उसके कर्म है वो उसको शर्मा नहीं रहने देंगे, अब वो बन गया रोहित अग्रवाल। अगर वो शर्मा था तो क्या करना चाहिए था? तो अब हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में ऐसे गुण हो, और हो सकता है चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास किसी भी पैदा हुआ, लेकिन ये गुण है उससे, ऐसा तो नहीं होता जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई अग्रवाल फैमिली में जन्मा है और वो एमबीबीएस कर लेता है, और एक व्यक्ति जो ब्राह्मण घर में हुआ है वो एमबीबीएस कर लेता है, क्या दोनों डॉक्टर नहीं कहलाएंगे? दोनों डॉक्टर कहलाएंगे। लेकिन लोग यही क्वेश्चन करते रहते इस्कॉन वाले ना किसी को भी ब्राह्मण बना देते, तो इस्कॉन वाले नहीं बनाते, शास्त्र बनाते, हमारे कर्म हमारे गुण बनाते। अगर कोई व्यक्ति ये गुण अर्जित करता है तो ब्राह्मण है। तो कौन से गुण बताए भगवान ने? चारों वर्णों को बहुत ही सुंदर तरीके से 18वें अध्याय में वर्णन किया। क्षमा दमा सपा शौचम शांतिर अर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम असेक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। तो यहां पर भगवान ने 9 गुणों को बताया। श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में भगवान ने 8 गुणों को बताया। जब ऋषभदेव महाराज को ज्ञान दे रहे हैं ऋषभदेव महाराज, तो वो 8 गुण बताए ब्राह्मण के, परंतु यहां पर 9 गुण बताए गए हैं ब्राह्मण। तो ये सारे के सारे गुण हमें मालूम होने चाहिए। पहला है शमो। शमो मतलब होता है शांति प्रिय। कैसा होना चाहिए?
शांति प्रिय,
झगड़ा झंझट ना, झगड़ा ना झाझा, सबसे बड़े एकांतवास, चुप रहे भजन, ज्यादा ग्रुप्स ग्रुपिज्म और इधर उधर सब जाना जाना गड़बड़। शांति प्रिय होना चाहिए, बहुत लड़ाई झगड़े या बहुत बड़ी बड़ी अलंकारी बातें करना आवश्यकता नहीं ब्राह्मण। दमहम आत्म संयमी, दूसरा गुण है आत्म संयम। उसको कैसा होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल्ड, आत्म संयमी, कि वो सदा ही मालूम हो मुझे कितना खाना है, मुझे क्या करना है, मुझे कब उठना है, मुझे क्या पढ़ना है, आत्म संयमी। तप, उसे तपस्या करनी चाहिए। तो सर्दियों में तो तपस्या, सुबह उठना ही बहुत बड़ी तपस्या है। तपस्या यही है हमारे वैष्णवों की कि सुबह उठें भगवान के दर्शन हेतु, उठ करके स्नान करके आ जाए मंदिर में, और यही तपस्या है वैष्णवों की, सुबह उठ करके जप करें। शौचम पवित्रता, शौचम चौथा गुण है, शौचम पवित्रता। उसके अंदर पवित्रता कैसी होनी चाहिए? आंतरिक पवित्रता और बाहरी, बाहरी दोनों प्रकार की पवित्रता। लेकिन आंतरिक पवित्रता आती नहीं है, बाहरी पवित्रता तो स्नान कर लेते हैं, अंदर की पवित्रता ये बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है। क्या है अंदर की पवित्रता? अगर हम नहीं लेके आए तो जब लोग बोलते हैं ना, पता है अपना तो नरक पक्का है, इस जन्म में तो अपन नहीं जा रहे बात करता, ऐसे बड़ी सरलता से भक्त बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। लेकिन देखा जाए गुरु के अवज्ञा करने का नाम अपराध लगता है उस व्यक्ति को जो कहता है कि मैं शुद्ध भक्त बनने का प्रयास ही नहीं कर रहा है लाइफ में। प्रभु जी इतनी सेवा है ना मेरे पास, मतलब शुद्ध भक्ति तो है ना अभी अलग कार्य है, ये ना नेक्स्ट लाइफ है। अगली जन्म में भगवान ने तो कहा शुचि नाम शुतां ग्रहां योगां दृष्ट हो जाएगी, आएंगे किसी घर में प्रभु जी आप ही आश्रम में, फिर क्या करेंगे आगे भक्ति करते नहीं, फिर साइन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसा जना गुरु अवज्ञा है। क्यों? गुरु क्या चाहते हैं? शुद्ध भक्त बने हर एक व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बनकर हृदय की स्वच्छता नहीं लाता तो सही मायने में वो गुरु अवज्ञा करके नाम अपराध है। और इसी तरह से उससे शुद्ध भक्त बनना बनने के प्रयास में वो धीरे धीरे अपने नाम को खराब करता चला जाता है। तो एक बुक है मैं पढ़ रहा था, इसका नाम उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति पुस्तक में मैंने देखा कि यहां पर लिखा है इफ वी आर नॉट टेस्टिंग अनलिमिटेड नेक्टर, अगर हम अनलिमिटेड नेक्टर मतलब रस स्वादन नहीं कर रहे, अनलिमिटेड इफ वी आर नॉट टेस्टिंग अनलिमिटेड नेक्टर व्हेन वी से हरे कृष्णा देन दैट मींस वी आर नॉट मोरली। इफ वी आर नॉट टेस्टिंग अनलिमिटेड नेक्टर, तो सोचिए जरा, अभी तो अनलिमिटेड की बात कह रहे हैं तो चम्मच भी नहीं गई नेक्टर की, तो अगर इतना सा भी नेक्टर प्राप्त नहीं हुआ तो हम कौन है? नाम अपराधी। तो उसमें फिर आगे वो लिखते हैं कि अगर आप नाम अपराध से बचना चाहते हैं तो श्री नाम अमृत नामक पुस्तक को पढ़ें, वो नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सुबह जो 10 नाम अपराध पढ़ जाते हैं, इनको औपचारिकता के लिए ना करें। कैसे करें? हृदय से करें। प्रॉब्लम यह है कि हम करते तो बहुत कुछ है, इतने सारे श्लोक आदि, इतने सारी सेवाएं, इतने सारे प्रचार कार्य, रोज हरिनाम यहाँ वहां बहुत कुछ करते हैं, पर दिल से कोई भी कुछ नहीं करता। दिल से करना जो है ना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने हृदय को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान जी कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वक, भगवान ने नहीं कहा भजताम क्रिया पूर्वक, भगवान जो है कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वक। अभी क्या होता है, जैसे कोई भगवत क्लास में आए तो जप करते रहते हैं, जप करते रहेंगे, क्या सोचते हैं 16 माला पूरी कर लो उसके बाद बहुत जगह जाना है, बाहर भी लोग मिलेंगे, प्रसादम में भी लोग मिलेंगे, गप के चलेंगे, अच्छा है सुबह मैं जप नहीं कर पाया भागवतम में फिनिश कर लेता हूँ, ये क्या हो गया ना अपराध नहीं है, ये क्रिया पूर्वक काम। जब भागवत सुन रहा है तो उसको भागवत के प्रति प्रेम नहीं है, वो उसी ब्राह्मण में जैसा है जो अपने परिवार में भागवत को छोड़ करके तीर्थों में भगवान का दर्शन करने जा रहा है और गंगा जी का दर्शन भी नहीं होगा उसे। तो इस कथा से जो हमने चर्चा किया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है गंगा जी का दर्शन हो जाए परंतु गंगा जी का दर्शन नहीं होगा, मतलब समझा, गंगा का दर्शन हो जाए पर गंगा का दर्शन नहीं होगा। जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने परिवार को लेकर के मायापुर यात्रा पे गए कलकत्ता से, तो उसमें सारे श्री भक्ति दान महाराज आए, छोटे बच्चे थे, 13 बच्चे थे, श्री भक्ति श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज 13 के 13 बच्चे लेकर के मायापुर धाम पहुंचे, तो वहां जाकर के कहां रहेंगे, भक्त जहां जाते हैं भी रहेंगे सब जगन्नाथपुरी आश्रमों में मंदिरों में रहते हैं, तो मंदिर के गेस्ट हाउस में आश्रम में रहते, तो वो भी जाकर के एक मंदिर में उन्होंने शरण ले ली। रात में वो रुके थे तो वहां पर एक भूत आ गया और वो आकर के आवाजें करने लगा, खिड़कियां खड़काने लगा और पुस्तकें फेंकने लगा, सारे बच्चे वगैरह घबरा गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते घबराओ मत, मैं अभी हरि नाम लूंगा और ये क्या हो जाएगा तुरंत भाग जाएगा। जब उन्होंने हरि नाम लेना शुरू किया तो वो सच में भाग गया वहां से। तो लेकिन जब जा रहा था तो उसने कहा, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कहा मैं पिछले जन्म में मतलब इस भूत प्रेत शरीर में आने से पहले मैं क्या था, ब्राह्मण था और मैंने बहुत हरि नाम जपाया। सब बोले हरि नाम जप कर भी कोई भूत बन सकता है क्या, बोलते हास परिहास हंसते हंसते या फिर मजाक मजाक में भी करते तो नाम आभास के रूप में व्यक्ति पवित्र होकर के भगवत धाम चला जाएगा, नहीं तो अगली योनी मनुष्य तो गारंटेड है। लोग पूछते तो जब कर रहे नाम अपराध हो जाए तो मनुष्य बन जाए ना, कुत्ता भी नहीं इसे बोलते डरते हैं। लेकिन सच्चाई है कि प्रेत भी बन सकता है व्यक्ति, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मेरे को मिला प्रेत और वो नाम जपता था, वो कहते बहुत बड़े प्रेत बन गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर की फैमिली ने भक्त महाराज ने पूछा हुआ, इतने बुद्धिमान वही थे सबसे ज्यादा पुत्र, बोला कि ये जप करके ऐसे कैसे हो गया, उन्होंने कहा क्योंकि इसने कभी नाम जपाई नहीं, ये अक्षर जापक था या फिर खाली बोलते ना क्या अल्फाबेट्स बोलता था, इसने कभी नाम जपाई नहीं, क्योंकि जो नाम जपेगा वो असीमित रस स्वादन कर रहा है, इसमें लिखा है उत्तम भक्ति है, असीमित रस का स्वादन कर सकता है वो व्यक्ति, सिर्फ क्या बोलने से पूरा मंत्र भी नहीं हरे कृष्ण, हम राजे सब बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण में गुस्सा भी करते हैं हरे कृष्ण, उसमें रसवादन ही नहीं होता, क्या प्रश्न चल रहे हमारे। तो अच्छा, तो अक्षर जापक नहीं बनना है हमको, नाम जापक, नाम जापक तो है तो रसवादन भी करेगा, इसलिए प्रभुपाद ने कहा जपो और सदा खुश रहो। बहुत दुखी रहते मुझे चैंटिंग में मन नहीं लग रहा, अभी चैंटिंग की इसलिए मन नहीं लग रहा क्योंकि अभी तो अक्षर जापक है, नाम जापक जिस दिन बनेगा खुश रहेगा, हमारे अमोक में गुरु सदा खुश रहते क्योंकि नाम जपते हैं, हम लोग कैसे दुखी रहते क्योंकि हम नाम नहीं जपते। तो इस तरह से नाम जप करने से क्या होगा, उस व्यक्ति का अंदरूनी शुद्ध होगा। तो अंदर की शुद्धि जो है ये इतनी सरलता से नहीं आती है, कहते हैं हम सबके सब हिरण्यकश्यपु जैसे हैं, क्यों, तो यहां पर एक और सुंदर चीज लिखी है जो कि डिमोनिक मेंटेलिटी बताई गई, क्या है पता है, किसी भी भक्त का गुणगान गाना जो कि गुणगान गाने योग्य नहीं है, अ फ्लैटरी इज योर वर्स्ट एनिमी, हमारे लिए मतलब कि कोई हमें फ्लैटरी करे ये नहीं कि हम गुणगान, हमारा कोई गुणगान गाए और कोई भी उस गुरु को समझ ले कि हम ऐसा हूं तो कैसा है, वो हिरण्यकश्यपु जैसा है, कहते हैं ये डिमोनिक मेंटेलिटी है, क्योंकि यहां पर सभी अपने गुण सुनना चाहते हैं और ये मेंटलिटी भी भगवान से आई है। क्यों भगवान कैसे हैं? भगवान भी अपना नाम सुनना चाहते हैं और हम भी अपना नाम सुनना चाहते हैं, है कि नहीं? ये गुण भी भगवान से है, इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरा नाम जपता है वो मेरा सबसे प्रिय हो जाता है। क्यों भी प्रिय हो जाता है? क्योंकि हमें भी सबसे प्रिय वही होता है जो सारा दिन बोलता रहता है प्रभु जी आप तो ना बस रोजी भगवान। अरे वाह यार ये तो सबसे अच्छा बंद है यार, आप आया तो रेगुलर क्लास में आया। तो ये भाव हमारे एक्चुअली यही है, ये भगवान से आया है, परंतु ये विपरीत है। भगवान कहते हैं कि है ना नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, मैंने नाम में सारी शक्ति डाली है, पर हमने उसको विपरीत ले लिया, हम सोचते हमारे नाम में डाली है, भगवान ने अपने नाम में। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम के प्रति समर्पित होगा तो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण के गुणों को अर्जित करेगा। तो ये शौचम पवित्रता है, और फिर है सहिष्णुता शांति, ये वाली शांति नहीं ओम शांति शांति, ये है शांति। सहिष्णुता मतलब सहनशील, टॉलरेंस, जिसे कौन है हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में मारा तो हरिनाम छोड़ने को तैयार नहीं, खंड खंड जाए दे जाए यदि ब्राह्मण तब तो ना बदले छड़े हरिनाम। और हम कैसे ठंड ठंड आए दे जाए हरिनाम। थोड़ी ठंड आती है तो रीति ना वो आजकल देखते हैं वो चैंटिंग बैग भी ऊनी, उसके अंदर उंगली भी ऊनी हो जाती है, ठंड ठंड आए दे जाए हरिनाम। कितना प्रोटेक्टिव बहुत चल रहा है ना हरिनाम के प्रति, पता नहीं वो भगवान पर उसका विश्वास ही नहीं है कि भगवान की रक्षा करेंगे, अपनी रक्षा करने में व्यस्त है, जो भी है। तो सहनशील ऐसे थे कि 22 बाजारों में मारा गया तो हरिनाम नहीं छोड़ रहे, बोले शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो पर ये हरिनाम नहीं जाएगा। और हम कैसे है, थोड़ी सी ठंड बढ़ जाए तो हमारा हरिनाम चला जाता है, इंतजार करते जब धूप निकली ना बैठ के करेंगे आराम से ध्यान होता प्रभु जी सुबह सुबह ना मजा नहीं आता ध्यान जब नहीं आ जाते औपचारिक मंगला आरती के लिए आते जब करने मन धूप में मजा आता है आराम से सूर्य के नीचे सूर्य भगवान को। तो सोचिए ये सहिष्णुता नहीं है उसके अंदर कि वो ठंड को सहन करे, वो खंड खंड देह को ध्यान कर रहे हैं, हम ठंड ठंड देह को सहन नहीं कर रहे। तो आप सोचिए हमारा अभी कहाँ टारगेट है, नाम के आचार्य श्री हरिदास ठाकुर इसीलिए नाम के आचार्य है, और हम नाम के आचार्य हैं, आचार दही पापड़ आचार्य वो आचार्य है, तो इसीलिए हमारी स्थिति खराब है। और फिर कहते हैं अर्जवम आर्जवम, आर्जवम का मतलब है सत्यनिष्ठा, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए सत्यनिष्ठ, जब भी बोलूंगा क्या बोलूंगा सच बोलूंगा, लेकिन हम तो अपने आप से भी सच नहीं बोलते। कल कोई व्यक्ति क्योंकि कलयुग में धर्म जो कायम है उसका एक ही पैर बाकी है सत्यता, अगर कोई व्यक्ति सत्य निष्ठा को भी पकड़ ले तो ब्राह्मण के गुण अर्जित कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसको जाति ब्राह्मण होना चाहिए, आर्जवम के द्वारा भी सत्यनिष्ठ होके वो ब्राह्मण बन सकता है। और कहते हैं ज्ञानम विज्ञानम, उसमें ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रिक वेद पढ़े भगवत गीता पढ़े, तो वेदों का सार है वेदस्य सर्वम अहम एव वेद्यो, वेदों में जानने योग्य कौन है भगवान। अगर कोई वेद में जानने योग्य भगवान कृष्ण को पढ़ लेता है ज्ञान, और फिर अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा इसका क्या करना पड़ेगा विज्ञान अप्लाई एक्सपेरिमेंट अपने लाइफ में इसको अप्लाई करें तो हम क्या बन सकते हैं भक्त बन सकते हैं, तब हम ब्राह्मण कहलाएंगे। तो ब्राह्मण बनने का मतलब ये नहीं कि जाति से ब्राह्मण होना या फिर पीछे टाइटल लगा लेना कि कुछ नहीं मिल रहा था तो हमने यही लगा लिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि नाम लिखने से आप वैसे नहीं होते हैं। इसे मैं सुन रहा था हमारे एक भक्त कहते हैं कि अगर नाम रख लिया अमरदास तो क्या अमर हो जाएगा, उम्र तो है, तो नाम रखने से कुछ नहीं होता है, नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम गुण, इसलिए नाम रख लिया ब्राह्मण का तो नाम से कुछ नहीं होता। इसे मैं भी उस दिन बता रहा था, हमारे घर के पास में पहले सीआरपीएफ कैंप होता था, सीआरपीएफ कैंप में हम लोग बच्चे ना जाया करते थे वहां पर खेलने के लिए, तो कई बार हमारी बॉल उसमें चली जाती थी, जब बॉल उसमें चली जाती थी तो वहां से हम रिक्वेस्ट करते थे तो सारे बच्चे मुझे आगे कर देते थे, कहते थे कि तुम अच्छे से बात कर सकते हो तुम जाओ, तो मैं जाता था बॉल मांगता, तो वहां पर दोस्ती हो गई थी, बॉल रोज ही गिरती थी 3-4 बार, तो बहुत ही विनम्रता से रिक्वेस्ट करके लाता था, बाकी बच्चे लड़ाई झगड़ा कर लेते देते हो नहीं देते हो पत्थर मार देंगे ऐसे, तो वो बेचारे क्षत्रिय भाव वाले थे, मैं क्योंकि भगवान के पास थोड़ा ब्राह्मण गुण थे बचपन में, अब नहीं रहे लेकिन तो आगे कर देते थे। वो बोले आप चले जाओ ले आओ बॉल, तुम्हें गया लेने। तो मैंने किसी से पूछा कि आप हमेशा हमारी बॉल देते, आपका नाम क्या है? कहा मैं मेजर हूँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने आके अपने पिताजी को बताया, पिताजी यहाँ पर एक व्यक्ति है मेजर है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। अच्छा मेजर है, मुझे भी मिलवाना। तो मिलवाने के लिए आ, मैंने कहा कि ये है पिताजी। कहा कि ये तो मेजर नहीं दिखता। मैंने कहा क्यों, इसकी शर्ट के बाहर तो शर्ट इसकी पैंट के बाहर आ रही है, चप्पलें पहने हुए हैं, ये मेजर तो नहीं दिखता। मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है कंफर्टेबल हो, लेकिन है मेजर, मुझे बताता है हमेशा जब भी जाता हूँ मैं मेजर हूँ। तो फिर जाकर के मेरे पिताजी ने जब उनसे मुलाकात करी, बातचीत करी, तो पूछा कि आपने कौन से सन में ये मेजर आप सीआरपीएफ में कब ज्वाइन किया? मैं तो कभी ज्वाइन नहीं किया, मैं तो गार्ड हूँ। लेकिन आप तो बताते ना बच्चे को मेजर। हाँ वो ना मेरा नाम है मेजर सिंह। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं फेल होता रहा, फेल होता रहा। तो मेरे माँ बाप सोचे कि ये व्यक्ति आगे कुछ कर नहीं पाएगा, तो इसका नाम ही रख देते हैं, कम से कम हमारी तसल्ली हो जाएगी, एक बच्चा मेजर बन गया। तो नाम के समरूप व्यक्ति को होना चाहिए, है ना। इसीलिए ब्राह्मण खाली नाम नहीं है, ब्राह्मण गुण है, और इन गुणों को अर्जित व्यक्ति को करना चाहिए। कि जैसे हमने भी जाना कि ब्राह्मण जो था वो गंगा जी के दर्शन करने के लिए गया, लेकिन भागवत के प्रति उसका समर्पण। अगर उसने ज्ञानम विज्ञानम किया होता तो उसके जीवन का अल्टीमेट क्या लक्ष्य होता? भागवतम, हरि नाम, है ना। लेकिन वो जा रहा है तीर्थ यात्राओं में, तो हम भक्त भी देखते हैं तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, ब्राह्मण दीक्षित भी जाते हैं, सन्यासी भी जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? वो वहां पर जाते हैं भागवत कथा चर्चा करने के लिए, वो कथा करने के लिए आ रहे डिस्कशंस, और उसके लिए एक अच्छी, जैसे जब सुत गोस्वामी का कथा करने गए, सुखदेव गोस्वामी कथा करने गए, तो उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना, सुखदेव गोस्वामी नैमिषारण्य, सुखदेव गोस्वामी सुखताल तीर्थ में कथा कर रहे हैं और सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में कथा कर रहे हैं। तो ऐसे स्थान है जहां पर कि ध्यान लगा करके कथा को ध्यान से श्रवण किया जा सके। तो इसलिए भक्त जाते हैं ऐसे स्थानों पर जाके कथा चर्चा कर सके। वो इसलिए नहीं जाते हैं कि वहां पर जाकर के पुण्य प्राप्त करें धाम का या फिर तीर्थ का या गंगा स्नान करने। वो करते हैं सारी औपचारिकता में कर लेते हैं कि चलो सबके साथ आए तो कर ले, परंतु उनका बेसिक उद्देश्य होता है भगवान के गुणों के बारे में, लीला के बारे में, नाम के बारे में, रूप के बारे में डिस्कशन चर्चा करना। क्योंकि ब्राह्मण जो है, भगवान कहते हैं वो मेरा मुख है। तो अगर हम भगवान को कुछ खिलाना चाहते हैं तो कैसे खिला सकते हैं?
अग्नि या आहुति डालते हैं और ब्राह्मण के मुख से।
तो भगवान कहते हैं भागवतम के पांचवें स्कंद में, न ब्राह्मणस्य तुलय भूतमन्या पिष्यामि विप्र किमथ परंतु यास्मिन् निप्रिप्राहुतं श्रद्धायं अश्नामि कामं न तथेत अग्निहोत्रः। तो भगवान कहते हैं न ब्राह्मणस्य तुल्यं भूतम, भूतम मतलब इस संसार में जितनी जीवात्माएं हैं, न ब्राह्मणस्य तुल्यं भूतम। अब जो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है ना, वो इस श्लोक को उठाकर के लेकर घूमता रहता है सब जगह पोस्टर लगा के, ना ब्राह्मणस्य तुल्यं भूतम। लेकिन वो ये नहीं सोचता ये क्या बोला भगवान ने गीता में, तो बोला गुणा कर्मा विभाग। तो हम ऐसा नहीं, अर्ध कुकटी न्याय नहीं करना चाहिए कि मुर्गी के आगे के हिस्से से दाना खाती है, पीछे से अंडा देती है, अंडे वाला मेरा और दाने वाला तेरा, आधी काट देता हूँ, दाने वाला तुम रख लो, अंडे वाला मैं रख लेता हूँ, दूसरे दिन अंडा मिलेगा। ऐसे हम करते हैं, ब्राह्मणस्य तुल्यं भूतम, न ब्राह्मणस्य तुल्यं भूतम। तुलना मतलब अतुलनीय है ब्राह्मण, कौन सा वाला? गुणा कर्म विभाग, जिसने गुण से और कर्मों से ब्राह्मणत्व को अपने जीवन में लाया है वो व्यक्ति हरि नाम के प्रति जिसकी श्रद्धा है। तो कई लोग ऐसा पूछते हैं कि वैष्णव ब्राह्मण होते हैं नहीं होते हैं? बोले जी ब्राह्मण वैष्णव होना हो इसमें तो संशय है, लेकिन वैष्णव ब्राह्मण ना हो इसमें कोई संशय नहीं। वैष्णव है जो ब्राह्मण बनने के स्तर पर आ रहा है, और वो अगर सच्चा वैष्णव बन गया तो वो ब्राह्मण है ही। कोई ये नहीं कह सकता अरे ये बड़े शुद्ध वैष्णव है, लेकिन एक्चुअली ना ये क्षत्रिय घर में जन्म हुआ है, इनकी शक्ति ऐसे नहीं। वैष्णव अगर शुद्ध है तो ब्राह्मण ही है, लेकिन हाँ ब्राह्मण कितना भी शुद्ध है तो हो सकता है कि वो वैष्णव ना हो। जैसे शिव के भक्त थे कौन? रावण। रावण जो है वो कौन है? ब्राह्मण, ऋषि विश्वरवा के संतान, दशा ग्रीवा, दस सर वाले शिव जी को अपने एक 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 सर धारण काट काट के देने वाला ब्राह्मण था, लेकिन वैश्य नहीं, दुराचारी था। अग्नि देव जो है पर बोला अग्निहोत्र, अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, अग्नि की एक स्त्री है उनका नाम है स्वाहा। इसीलिए जब भी हम कोई भी आहुति देते हैं तो बोलते हैं अंत में क्या, स्वाहा, उनकी पत्नी को देते हैं, और स्वाहा ले जाके उसे अग्नि देव को देती है, भगवान जो अग्निहोत्री भगवान है। लेकिन रावण ऐसा था कि जब भगवान का यज्ञ किया, यज्ञ होने के बाद में जब अग्नि और स्वाहा दोनों प्रकट हुए आशीर्वाद देने के लिए, तो देखिए कितना उच्चारण किया होगा उसने, हमारे अग्नि में कभी भगवान देव नहीं प्रकट, तो इतना उच्चारण शुद्ध था कि अग्निदेव और स्वाहा प्रकट हो गए। कहता है स्वाहा तो बड़ी अच्छी थी, है अग्निदेव को मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे स्वाहा चाहिए, और स्वाहा को लेके भाग गया। वो कह रहा है स्वाहा स्वाहा कर रहा, तो स्वाहा ले गया, अरे तुमने मेरा स्वाहा कर दिया, मेरी पत्नी दे दे। वो पीछे पीछे अग्निदेव जा रहे हैं, रावण स्वाहा को लेके भाग गया। जस्ट इमेजिन, ऐसा दुराचारी व्यक्ति क्या कभी ब्राह्मण हो सकता? लोग बोलते अरे रावण का पुतला नहीं जलाना चाहिए, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का दुराचारी है वो। तो लोग बोलते नहीं वो जय विजय है। तो चैतन्य चरितामृत के चौथे अध्याय आदि लीला में आता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जय विजय खाली तीन बार आते हैं। भगवान ने उनको ऑप्शन दिया था तो सात बार आ जाओ भक्त बन के, या दुराचारी बन के तीन बार आ। तो बोले जी भगवान आपसे हम ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएंगे, तो हम तीन बार द्वेष करके भक्त नहीं बनेंगे, तीन बार द्वेष करके आपके वापस धाम में आएंगे। वो तीन ही बार तो आए, लेकिन कल तो घूमते जा रहे घूमते जा रहे घूमते जा रहे घूमते जा रहे, 43,20,000 वर्षों का एक चतुर्युग, ऐसे हजार बार जब घूम जाते हैं तब जाकर के 12 घंटे ब्रह्मा जी के पूरे हो रहे हैं, ऐसे जब 12 घंटे और पूरे हो जाते हैं तब एक दिन पूरा हो रहा है, ऐसे 365 दिन होने पर एक उनका साल पूरा हो रहा है, और ऐसे पूरे 100 वर्ष होने पर ब्रह्मा जी का जीवन खत्म हो रहा है। तो जो ये 12 घंटे हैं, इस एक दिन को 12 घंटे सुबह और 12 घंटे शाम को कहते हैं एक कल्प, तो एक कल्प के अंदर भगवान एक बार प्रकट हो रहे हैं। तो अब आप ये जरा सोच करके देखिए कि उसमें से सिर्फ तीन बार एक युगों में तीन बार ऐसा हुआ, जब त्रेता युग आया, द्वापर आया और सतयुग आया, उसमें एक बार वो आ गए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनकर, एक बार रावण कुंभकर्ण, और एक बार शिशुपाल रुद्र। लेकिन ऐसा नहीं कि जितने कल्प घूमते जाएंगे उन सभी में वो आते चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, हर एक कल्प की एक कथा होती है। तो चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद लिखते हैं कि हर बार जो आता है वो दुराचारी रावण है, उसको जलाना ही चाहिए। जैसे लोग कंस के लिए कहते हैं, अरे कंस तो ना बहुत ही बड़ा प्रेमी था अपनी बहन देवकी का। कैसे प्रेमी था? बोले अरे अपनी बहन के दहेज में लोग गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो ऐसा था ड्राइवर बनने को तैयार हो गया, कितना विनम्र भाई था, और इतना विनम्र भाई था, लेकर के चला जब रथ में अपनी बहन को, तुरंत ही जैसे उसने आकाशवाणी सुनी, ऑल इंडिया रेडियो तुरंत सुना कि इसका आठवां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण होगा, तुरंत ही सब कुछ छोड़कर अपनी तलवार निकाल के बहन को मारने आया। तो सोच के देखिए जरा, क्या ये सदाचारी है या दुराचारी है? तो फिर वो सदाचारी एक्टिंग क्यों कर रहा था? पता क्यों कर रहा था? इसे कई लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं, आप उनके पास जाओ कि कुछ डोनेशन दे दीजिए मंदिर के लिए, तो कहते हैं हाँ हाँ दे दो। क्यों? सोचते हैं बहुत गलत काम किया है, थोड़ा अच्छा कर लेंगे ना तो माइनस प्लस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो जानते नहीं है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स में 8 गलत किए 2 सही किए तो 8 गलत का भोगना पड़ेगा, 2 सही का मिल जाएगा। 8 गलत किए 2 सही किए तो माइनस नहीं होता, तो सोचते चल 2 खत्म हो गए। ऐसा नहीं होता, खत्म कुछ नहीं होता, पुण्य का पुण्य मिलेगा, पाप का पाप, जैसा जैसा करते जाएंगे वैसे वैसे भरते जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं कि एक ऐसे फिल्म सारे हैं जो कि बहुत ही पुण्य कर्म करते हैं, जितनी उनकी कमाई होती है उसमें से काफी कुछ हिस्सा वो गरीबों में दान देते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, तो ये तो पुण्य करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं, लेकिन साथ में स्त्री कामी भी है, स्त्री भोगी भी है। हाँ अच्छा, फिर इस कर्म का क्या फल मिलेगा? वैसे तो कुत्ता बनता है व्यक्ति। तो बोले कि हाँ, तो फिर पुण्य का क्या होगा? पुण्य न्यूट्रलाइज हो जाएगा? नहीं, बड़े ज्यादा कुत्ता बनेगा, पुण्य न्यूट्रलाइज कैसे हो जाएगा? हमारी घर में कुत्ता हो सकता है। बोले फिर वो, लेकिन कहते हैं कि अंत में जैसी इच्छा हो वैसा शरीर मिलता है। मैंने कहा उसकी बेटी की गोद में रहेगा, स्त्री का स्त्री की कामना भी पूर्ण करी भगवान ने, भगवान सूर्यदम सर्वभूतानं। तो भगवान ने किया कि स्त्री कामी है, स्त्री के गर्भ में गोदी में भी आ गया, पुण्य कर्म था इसी घर में भी आ गया, लेकिन कर्म गलत भी थे उसी घर में कुत्ता बन गया। तो कुत्ता तो बना उसकी बेटी के घर में बना, लेकिन रहीसी घर में बना, लेकिन बना कुत्ता। तो इस तरह से प्लस और प्लस माइनस नहीं होता, ये सब चलता है। तो इसी तरह से जो कंस था वो दुराचारी है परंतु सदाचारी बनने का वो ड्रामा कर रहा है। जैसे कई नेता होते हैं ना पब्लिक में, बहुत बड़े सवाल वाले काम लेते हैं तो उतना मेरी थोड़ी छवि बदल जाएगी, बहुत गलत काम किया। तो ऐसे ही वो जो छवि बदलने का प्रयास कर रहा था कंस अपनी बहन को, वो इसीलिए। और अगर हमें पता करना हो कि व्यक्ति सदाचारी दुराचारी तो क्या करना चाहिए,
उसको एक प्रोवोक करना,
बस एक गुस्सा आपने दिलाया उसको, ऐसी कुछ बात बोल दो उसका क्रोध आ जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि वो सदाचारी दुराचारी। यही आकाशवाणी की देवताओं ने देखा, सच में सदाचारी है दुराचारी, चेक करके देखे कि हाँ, अरे देवकी का आठवां पुत्र तेरा कार होगा, चेंज हो गया पूरे। तलवार करके भयानक बहन की बाल पकड़ करके कहा गर्दन काट दूंगा, सोचो कहां प्रेम का कहां क्या दुराचारी। तो ये दुराचारी सदाचारी बनने का ड्रामा कर रहे हैं तो सदाचारी नहीं। तो इस तरह से ब्राह्मण जो है वो न ब्राह्मणस्य तुल्यं भूतम् का मतलब ये नहीं है कि मैं नाम से हूं, हमें सच में कर्म और गुणों से भी ब्राह्मण होने का प्रयास करना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो वो ब्राह्मण बनने के योग्य है। और ऐसे ब्राह्मण को क्या खिलाना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए। तो प्रसाद कैसे खिलाना चाहिए, घी में पका करके, शुद्ध घी में, डालडा वाले में नहीं रिफाइंड में, शुद्ध घी में। अभी हो सकता है ऐसा ब्राह्मण बोलेगा कि भैया आप तो घी में पका रहे हो, मेरा पेट फूल जाएगा, बोले कोई कुछ आज तो हमने आपको पकड़ लिया तो पकड़ेंगे आज आप बच्चे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कामम न तथा अग्निहोत्रे, अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से भी ज्यादा उसको मैं प्रसन्न होता हूँ, किससे, जब ब्राह्मण को मैं उसके मुख में डालता हूँ। क्यों, क्योंकि भगवान ने इस श्लोक में कहा पुरुषस्य मुखम, पुरुष भगवान कह रहे हैं मेरा मुख जो है वो ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण, अब आदमी बोलता है ब्राह्मण के मुख से भगवान तक कैसे पहुंच जाएगा, वे ब्राह्मण के मुख में डाला वो तो मल में निकल जाता है, भगवान तक कैसे जाएगा, ये खाया है तो मल में चला गया, भगवान तक कैसे जाएगा। बोले ऐसे जाता है जैसे कि तुम ईमेल लिखते हो अपने घर में बैठ कर, वो अमेरिका में ईमेल पहुंच जाता है, दिखाई देता कैसे गया। तो ये सूक्ष्म है, एक स्थूल रूप से होता है, एक सूक्ष्म रूप से, स्थूल से हमको दिखता है कि वो मल रूप में चला गया, लेकिन जब ब्राह्मण प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान कहाँ बैठे, हृदय में, यहाँ हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन हृदय के पास ही बैठे होंगे। तो यहाँ जब भगवान बैठे हैं यहीं से वो आशीर्वाद देते, वाह मेरा भक्त प्रसन्न है आज प्रसाद खा करके, तो बस हो गया। घी में पका हुआ बढ़िया सा खिला दे तो, लेकिन ऐसा नहीं खिलाना चाहिए जिसको खा करके व्यक्ति बोले अरे ऐसा, तो वो खुश नहीं होगा, तो भगवान भी खुश, तो वही खिलाना चाहिए जिसमें वो खुश हो। जैसे पूछना चाहिए, जैसे कभी कोई महाराज आते हैं तो हम लोग पूछते हैं महाराज आप क्या लेंगे, या प्रभु जी आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो कारण ये है, पता चला हमने जो 56 को खिला दिया वो खाते हैं उंगली सब्जी, अगर हमने उनको प्रसन्न ही नहीं किया, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण भगवान के मुंह पर, भगवान नाराज हो गए। तो इस तरह से भक्त को खिलाने में भी बड़ा ही बहुत ही बड़ी सेवा है। रूप गोस्वामी कह रहे ददामी, जो कहते हैं प्रच्छति, बोलते हैं ना गुहितम अच्छाति प्रच्छति, उसमें बोल रहे हैं कि भक्तों को खिलाना भी चाहिए खाना भी चाहिए भक्तों के, पर खिलाते वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये व्यक्ति सच में ब्राह्मण है कि नहीं है। तो अब लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मान लीजिए वो ब्राह्मण नहीं हुआ या वैष्णव नहीं हुआ और हमने खिला दिया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, तो आपने एक अच्छा कर्म कर लिया, ब्राह्मण नहीं था, आपने किसी को ऐसे था वो शूद्र ब्राह्मण का तिलक लगा के आ गया था शॉल ओढ़कर ऐसे मेरी तरह से और लगा ब्राह्मण था हमने खिला दिया उसको, लेकिन सच्चाई में वो ब्राह्मण नहीं था, उसके गुण ब्राह्मण वाले नहीं थे, प्रभु जी अपराध हो गया, भगवान नाराज हो जाएंगे, नहीं होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण है, मतलब उसने गुण अर्जित किए, लेकिन है वो सफेद कपड़े में ग्रस्त है, इनको नहीं बुलाते, ये तो ग्रस्त है, ये ब्रह्मचारी को बुलाते हैं, वो अच्छे ब्राह्मण है। हाँ अगर वो ब्राह्मण हुआ और आपने ऐसी मेंटलिटी लिया है, ये अपराध नहीं है, आप तो इसका मतलब हम सबको जज करते रहे ये ब्राह्मण बनने योग्य है ये ब्राह्मण, इसका मतलब ये है जज मत करो, सभी के प्रति सम्मान की दृष्टि रखो, चाहे वो ग्रस्त हो सन्यासी हो वानप्रस्थी हो शूद्र हो क्षत्रिय हो, सभी को सम्मान, क्योंकि ना जाने अपराध कब लग जाए। तो अपराध से बचने के लिए इक्वल टू ऑल, जैसे भगवान ने समाहम सर्वभूतेषु, इक्वल टू ऑल भक्त को भी वैसे इक्वल टू ऑल, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसके प्रति मैं थोड़ा ज्यादा प्रेम रखता हूँ, ऐसे ही जो आपके टीचर्स हैं जो आपके वैष्णव हैं उनके प्रति थोड़ा ज्यादा प्रेम है, लेकिन सम्मान सबको, एक नव ब्राह्मण को खिला दिया तो अपराध नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को ये सोच लिया ऐसा करते हैं ना, दो ब्रह्मचारी को बुला लेते हैं और एक इनको बुला लेते हैं ना, रोहिणी सूत्र और एक ना इस इनको बुला लेते हैं, ऐसे कर प्लान किया और सोचो अगर वो ब्राह्मण था उसको नहीं खिलाया तो हमारा नाराज नहीं सकते, तो फिर इसका मतलब अच्छा है कि जितने बैठे ना सबको खिला सकते, बस यही जितने बैठे सबको मुझे खा ली जाइए सब लोग। तो इस तरह से गुणों को बताया गया, ब्राह्मण के गुण और क्षत्रिय के गुण बताए गए, शौर्य तेजो धृति दाक्षम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वरम भावम च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। जन्म से ही ऐसा स्वभाव होता है व्यक्ति का, कैसा शौर्यम उसमें वीरता होती है, तेजम उसमें शक्ति होती है, ऐसा नहीं होता कि है ना नाम क्या है राम सिंह चौहान या फिर राम सिंह बहादुर और आवाज आई बहादुर बोल रहे गेट बंद करो कुत्ता भोंक रहा है, बोले आपका नाम तो बहादुर, मेरे नाम पे बहादुर मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से, या फिर नाम है राम सिंह चौहान या सिंह है ना, ऐसे नाम रख लेते हैं लोग, केशव सिंह सिंह नाम रखा है, लेकिन सिंह टीवी पे भी आ जाता है तो है ना घबराया, अरे सिंह बोले आप तो सिंह थे, बोले खेने का ही सिंह। तो इस तरह से क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, वीरता होनी चाहिए, वैसे क्षत्रिय होते थे सामने सामने जाकर के ऐसे शेर का शिकार करते थे, लोग बोलते हैं कि है ना भगवान राम जो थे ना वो क्षत्रिय थे और उन्होंने जाकर के है ना जंगलों में हिरणों के शिकार किए, मांस खाया, ये किया वो किया, बेवकूफ लोग ज्ञानी नहीं क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते, न रामायण पढ़ते हैं न महाभारत पढ़ते हैं न गीता पढ़ते हैं न भागवत पढ़ते हैं न वैष्णवों का संग करते हैं, वो करते हैं टीवी का संग, और टीवी का संग करने से जैसे प्रभु जी कहते हैं सैमसंग, सैमसंग का संग करते हैं, सैमसंग टीवी चलाते हैं और संग करते हैं और फिर क्या होते हैं अपने ज्ञान को बिल्कुल ही अज्ञानता में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि टीवी में तो वो दिखाया जाता है रावण के कैरेक्टर को ऐसे दिखाया जाएगा, राम का कैरेक्टर बोले तो इतना नहीं चलेगा ज्यादा, तो टीआरपी किससे आएगी रावण की से, इतना रावण ग्लोरीफाई कर दिया जाएगा, रावण 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 की आंखों को टहन टहन क्लोजअप दिखाया जाएगा और उसके एक्शन को क्लोजअप में उसकी वाणी को इतना बार 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 दिखाएंगे, लगने लगता है कि रामायण चल रही है रामायण चल रही है, रामायण लगता है सीरियल लेकिन है वो रामायण, रावण उड़ता है रावण ऐसा करता है रावण वैसा, रावण तो अरे भगवान राम के आगे वो क्या है कुछ भी नहीं, तो लेकिन इतना बड़ा शिव जी का भक्त है और जब उसको मारने के लिए भगवान राम आ रहे हैं तो शिव जी को पार्वती कहती है देखो आपका भक्त मारा जा रहा है, भगवान कहते हैं तो बने ही मरने के लिए, पंगा किससे लिया, जो सबको बचाने वाला उसी से पंगा ले लिया तो कैसे बचेगा, ये तो मरे पार्वती बोली नहीं बचाएंगे, मैं बचा ही नहीं सकता, आउट ऑफ फोकस हो गया मेरे मेरे गेम ये हार बाहर चला गया, अब मैं बोल ही नहीं सकता, जैसे मान लीजिए मेरे हमारे साथ कोई भक्त डिस्कशन कर रहा है करते करते चला जाए वो प्रद्युम्न प्रिय प्रभु के पास प्रेसिडेंट के पास गया फिर रामोला गुरु जी के पास, फिर बोले आगे तो उन्होंने ऐसा किया आपने क्या बोले आप क्या कर रहा है तो चला गया उधर जो बोले वही करना, हम क्या बोल सकते हैं। तो अभी वो शिव जी के पास जो भक्त था उसने इतनी तपस्या करी गर्दन काटी तब जाकर के बेचारे को लंका मिल गई, और विभीषण जैसे भक्त क्या किए भगवान श्री राम के चरणों में समर्पण किया और फिर सिर्फ शरणागति जिसकी चर्चा हम करते हैं सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरण व्रज, और वो लंका प्राप्त करी, ना गर्दन काटनी पड़ी ना तपस्या करनी पड़ी ना दीमकें लगानी पड़ी, बस सिंपल सा क्या करा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे,
बस राम का नाम जपा। तो राम नाम जब जपता था तो रावण को किसी ने बोला कि आपका भाई है कि आस्तीन का वो क्या कहते हैं सांप चिराग सांप आस्तीन का सांप है खाता आपका है नाम भगवान का जपता है, रावण पहुंच गया दुराचारी निकल जा मेरी लंका से, मैंने इतनी तपस्या करके लंका पाई तू बैठा है यहाँ पर मेरे दुश्मन का नाम लेता है विष्णु का नाम लेता है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो वो राम ले रहा था कहा मैं आपका ही नाम लेता हूँ भाई आपको किसी ने गलत बताया है, और कैसे कहा रा से रावण माँ से मंदोदरी, हमें राम भैया भाभी का नाम रखता हूँ, बोल कितना नाम नहीं जपा जाता रावण मंदोदरी इससे जीप लटकाती है, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म निकल लिया राम 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 राम, अगर ऐसी बात है तो पूरी लंका में लिखवा दो लंका में राम राम लिखवा दे, उसी दिन हनुमान जी का प्रवेश हुआ लंका जली में, राम नाम की कृपा ऐसी है
कि खाली लिखवाने से क्या हो गया लंका के मार। तो अगर आपके हृदय पे राम नाम जग जाएगा तो क्या इसमें कोई कर्मश बचेगा? और रोज जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है बड़ा कर्मश है, तो मुझे पवित्र नहीं हो रहा है। कारण यही है कि हम अक्षर जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। नाम जप जब करने लग जाएंगे सब समाप्त हो जाता है। तो एक अंतिम कथा बताऊंगा समाप्त हो, समय हो गया है वैसे, कि जो ये क्षत्रिय के गुण है इनको ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। इन क्षत्रिय के गुणों में हम भगवान राम को क्षत्रिय नहीं बोल सकते। जैसे कई लोग पूछते हैं कौन में ना विदेशी सन्यासी भी है। अब ये तो बेचारे मांस मदिरा इनका सेवन करने वाले ऑरेंज कपड़ा पहन लिया तो क्या ये महाराज हो? हम दीक्षा लेंगे किसी से जो इंडियन महाराज है, ये ना उनका पता करो ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण में पहले अरे तोने ये असली महाराज, ये बिल्कुल ही अपराध करने वाली स्थिति है। क्योंकि जो व्यक्ति कई लोग ऐसे पूछते आपके सन्यास आपके महाराज ये पंजाबी है? सब महाराज पंजाबी होते हैं कोई? अच्छा हमारे महाराज तो उड़िया थे, महाराज उड़िया होते हैं। कोई भी भक्त जो वैश्य बन गया जिसने ब्राह्मण गुण अर्जित किए वो उड़िया पंजाबी भक्त नहीं है, वो तो भगवान का भक्त है। जो हरि का भजन करता है हरि को भजे सो हरि को गोई, वो हरि भजन करने वाला हरिजन बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, हरि का जन बन जाता है। लेकिन लोग इसी पर रहते हैं ये उड़िया भक्त ये पंजाबी भक्त ये महाराज ऐसे वो विदेशी, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान पे भी लोग बोलते हैं भगवान तो ना कृष्ण तो यदुवंशी थे, यदुवंश के थे, भगवान किसी वंश के नहीं है। ये संसार में जितने वंश चल रहे हैं ना हम कहते हैं ये मेरा बेटा मेरा अंश, उसका एक्चुअली वंश कृष्ण ही होते हैं। वो सारी कृष्ण परंपरा चल रही है सब जगह लेकिन हमें लगता है ये यदुवंश के हैं, भगवान लीला कर रहे हैं। लेकिन भगवान चाहे वो पंजाबी वंश चल रहा हो या राजस्थानी वंश चल रहा हो या मारवाड़ी वंश चल रहा हो, उसका उद्गम स्थल भगवान कृष्ण, तो सारे वंश जो है वो भगवान। इसीलिए सप्त ऋषियों में सप्त गोत्र आते हैं ना, शांडिल्य गोत्र, भारद्वाज गोत्र है ना, जितने भी ये सरयू पानी ब्राह्मण, बहुत सारे प्रकार के गोत्र हैं। तो इन गौतम गोत्र, इन गोत्रों में से जब कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेता है ना, और वो भगवान कृष्ण के भक्त की शरण ग्रहण करता है तो वो बन जाता है अच्युत गोत्र, ये अलग ही गोत्र है। इसका मतलब कि हमने ऋषियों से भी ऊपर जो ऋषियों का भी उद्गम है, ये सात ऋषि थे जिनसे प्रजा आई, और इसीलिए जो जो जिस प्रजा का होता है वो उस प्रजा के ऋषि के नाम को बोलता है, हम उस ऋषि के संतान है, हम उस गोत्र के भारद्वाजी गोत्र। अब वो भारद्वाजी गोत्र ब्राह्मण भी हो सकता है क्षत्रिय भी हो सकता है क्योंकि वो तो गुणों के आधार पर निर्धारित किया गया था। लेकिन अगर कोई बोले मैं अच्युत गोत्री हूं, इसका मतलब वो ऋषियों से भी ऊपर अभी वो कृष्ण का भक्त है। तो अब वो ना तो पंजाबी है ना उड़िया है ना वो कुछ है, वो तो तीनों गुणों से परे जो भगवान है। ऐसे ही भगवान राम क्षत्रिय नहीं है, भगवान कृष्ण जो यदुवंश नहीं है, कोई चरवाह नहीं है, भगवान कौन है वो भगवान की लीला है। भगवान त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है, भगवान जाति पाति से परे है। जिसने खुद ही जाति पाति बनाई वो कैसे जाति के अंदर फंस सकता है? भगवान ने खुद गुण बनाया वो कैसे गुणों में फंस सकते हैं? भगवान सबसे परे है। तो ऐसे ही भगवान राम के समय में एक दिन भगवान राम अपने व्यास आसन पर बैठे थे किंगडम के अंदर जैसे होता है, और रोज भगवान की सभा चलती थी, भगवान की सभा चल रही थी और भगवान की सभा में आवाज आ रही थी जोर से रोने की। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा हे लक्ष्मण राम राज्य जो है इसका लोग गुणगान गाते हैं, राम राज्य का लोग गुणगान गाते हैं कि राम के राज्य में कुछ भी कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता, एक भी लिविंग एंटिटी एक भी आत्मा एक भी जीव आत्मा एक भी कण दुखी नहीं रह सकता, वो राम राज्य है। तो ऐसा राज्य में कोई कुत्ता रो रहा है पता करके आओ क्या हो। तो लक्ष्मण जी गए तीर वीर लेके पहुंचे वहां पर, देखा कुत्ता रो रहा है, बोले क्या हुआ क्यों रो रहे हो? तो उसने अपना सिर दिखाया, कहा मेरे मस्तक पे खून दिख रहा है? लक्ष्मण जी बोले हाँ दिख रहा है। कहा एक यति ब्राह्मण ने, ब्राह्मण भी था वो, क्या था यति सन्यासी भी, उसने अपना डंडा जो कि उसको मिला था प्रचार करने के लिए उसने मेरे को दे मारा, इतने जोर से मारा कि यहाँ ब्लड क्वालिटी हो रही है मस्तक पर। आज सन्यासी था उसने सिर पे मारा, कहा ब्लड क्लॉटिंग हो गई, कहा क्या करूं? कहा मुझे न्याय चाहिए, आप राम राज्य में ऐसा कैसे हो गया कि पिटाई हो गई? कहा तुमने कुछ किया हो? लक्ष्मण जी बोले तुमने कुछ किया हो? कहा जी कुछ नहीं किया, वो यति भिक्षुक है जगह जगह भिक्षा मांगता है, भिक्षा मांगने के लिए गया एक जगह बोला भिक्षाम दे, अंदर से आवाज है कुछ नहीं आए बड़ो, जब ऐसी आवाज में तो उसको गुस्सा है,
गुस्सा आया तो उसने उठा करके कहा मेरे को इस सन्यासी के साथ ऐसा व्यवहार, मैं बीच में खड़ा इंतजार कर रहा था अपनी रोटी का, तुमने बेमाना मुझे ऐसे कर, मेरे माना यहाँ खून जमा हो गया, न्याय दो भाई कि ऐसा कैसे कर दिया ट्रीटमेंट राम राज्य में। तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है मैं भगवान राम से पूछता हूँ, तुम चलो दरबार। कहा जी मैं दरबार में जाऊंगा तो क्या मुझे कुछ जाने देना? राम दरबार कृष्ण दरबार को मंदिर होता है, वो कोई नॉर्मल राज्य तो राज्य नहीं है, मैं मंदिर में जाऊंगा, अगर मंदिर में भी यहाँ पर भागवत क्लास में कुत्ता आना चाहे तो फट से एक भक्त खड़ा होकर गेट बंद करेगा, हट हट करेगा, मुझे हट हट कर देंगे, मैं राम राज्य के राम दरबार में प्रवेश कैसे करूँ? चिंता मत करो मैं बात करता हूँ। भगवान राम से पूछा, भगवान राम बोले हाँ बात तो सच है, वो आ नहीं सकता। तो ऐसा करते हैं अगर भगवान के पास कोई नहीं आ सकता लेकिन भगवान तो जा सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जगन्नाथ यात्रा निकालते तो उसमें कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं ना, दर्शन करते रहते भगवान के, ये आइडिया है। तो भगवान ने कहा आज का दरबार धूप में लगेगा, आज मेरी यात्रा मतलब झांकी बाहर रहेगी। तो भगवान राम दरबार से निकल करके बाहर आए, भगवान ने अच्छा खासा प्रांगण में धूप में आकर भगवान बैठ गए, सभी राज्य के लोग बैठ गए, ऋषि मुनि सब बैठ गए, कहा निर्णय होगा, बुलाओ भाई यदि सन्यासी को बुलाओ साथ में कुत्ते को भी बुलाओ। कुत्ता आया बैठ गया अपनी जीभ निकाल दी और सन्यासी के आगे खड़ा डंडा लेकर के बोले हाँ जी निर्णय होगा। तो सन्यासी बोला काहे बात का निर्णय, काहे बात का निर्णय, गलत क्या किया, मैं उच्च हूँ चतुर्वर्णम है ना, मया सृष्टम गुणा कर्म विभाषा, चार आश्रम बनाए चार वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? भगवान बोले बिल्कुल। और बोला आश्रमों में ब्रह्मचारी ग्रस्ता वानप्रस्थ सन्यासी, सन्यासी दंडीधारी सन्यासी आश्रमों में श्रेष्ठ और वर्णों में श्रेष्ठ, और दोनों में मैं श्रेष्ठ होकर के अगर एक कुत्ते को शूद्र को एक जोटोटी होने को डंडा मार भी दिया तो उसमें न्याय, न्याय क्या करने में जाता मानो रखो। राम राज्य में सन्यासी हो या कोई भी हो बंधा हुआ है आश्रम हो, अगर बंधा हुआ है आश्रम में सन्यासी सोचे मैं सन्यासी बन गया, बोले यही सोचना उसका उसको शूद्र बना देना, मैं सन्यासी बन गया या फिर मैं बोचा हो गया ये सोच करके वो किसी भी आश्रम का हो किसी भी वर्ण का हो वो सबसे नीचा हो गया ये सोच करके तुम्हें न्याय मिलेगा। अभी सब सोचने लगे क्या न्याय देंगे भगवान, भगवान आंख बंद करके 5 मिनट चिंतन करते रहे, सीता की तरफ देखा, लक्ष्मण की तरफ देखा, भरत शत्रुघ्न की तरफ देखा, ऋषि वशिष्ठ की तरफ देखा, विश्वामित्र जी को सबको देखा आंख बंद की। तो भगवान ने कहा एक काम कर तुम्हारा न्याय हो गया। कहा मेरा न्याय चलिए ठीक है भगवान आपके आगे मैं क्या बोलूं, भक्त तो हम आखिर आपके ही है ना, भक्ति है लेकिन ईगो के साथ भक्ति हमारी। तो भगवान ने कहा मध्य प्रदेश में एक कालिंजर तीर्थ है, कालिंजर नाम का एक तीर्थ है, उस तीर्थ में बहुत धन एकत्रित है, जैसे हम धन एकत्रित करना चाहते हैं मंदिर बनाने के लिए, वहां धन एकत्रित है मंदिर चलाने के लिए, लेकिन कुछ चलाने वाले नहीं है, मठाधीश वहां नहीं है कोई, तो मठ के जो ब्रह्मचारी आते हैं वो आपस में बहस करते रहते हैं मैं बड़ा कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, और उसका लेटर आया हुआ है मेरे पास में क्योंकि भगवान राम का राज्य, तो उन्होंने कहा है कि कोई मठाधीश भेजिए भगवान बताइए हमें से कौन ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है। तो मैं सोच रहा हूँ ब्रह्मचारी को ना बनाऊ, आप तो यति है सन्यासी, आपको मठा का देश मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द टेंपल बना दो। तो ठीक है मठाधीश बनाकर भेज दिया भगवान का, आप यही कार्य चला गया। तो जब वो चला गया तो है ना सारे के सारे लोग बोलने लगे ये भी क्या न्याय हुआ, इतनी जोर से कुत्ते को मारने बेचारा दुखी अपाहिज टाइप का आया लड़ाता सिर में चोट, भगवान भी मतलब कभी कभी ना क्या लीला करते क्या न्याय दिया, मेरे को बेटा है एकदम बेटा। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे और कुत्ता भी मुस्कुरा रहे। तो जो उसके एक सुहृद थे कुत्ते की जाति वाले भी थे वो गुस्से लगे ये क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या बात है जो इतना मुस्कुरा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए मुस्कुरा रहा हो, अरे तुम्हें तो न्याय ही नहीं मिला, अन्याय हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ मिला भी नहीं, और वो बेचारा उसके लिए तो क्या हो गया अभिशाप की जगह पुरस्कार हो गया, वो तो बड़ा खुश हो गया सन्यासी भजन का फल मिल गया, मैं क्या बन गया हेड बन गया भजन का फल। तो ऐसे ही हमें भी लगता है जब भजन का फल मिल गया मैं हेड बन गया तो मुझे मेरे भजन का फल मिल गया, हम भजन कर रहे थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, परम लक्ष्य था भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति प्राप्त करना, लेकिन यहाँ डेजिग्नेशन मिल गया तो मैं क्या बन गया बस भजन का फल प्राप्त हो गया। तो उस सन्यासी को भी लगा भजन का फल मिला, और जो कुत्ता था वो हंस रहा था और बाकी लोग थे वो कह रहे थे ये पुरस्कार है कि तिरस्कार है, ये तिरस्कार है कि पुरस्कार है? त्राहिमाम, हे राम ये आपने क्या किया? भगवान ने कहा इस कुत्ते से पूछो इसका न्याय अब ये करेगा, मैंने तिरस्कार किया कि पुरस्कार? तो कुत्ता कहता है कि तुमने पूछा तुम हंस के रहे हो, उसी कुत्ते जाति वाले की बड़ी टेंशन में थी, क्यों हंस रहे? कहा पिछली योनि में मैं कैलेंडर तिथि का मटर बेचता इसीलिए प्रॉपर्टी को यूटिलाइज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड की वजह हो जाती है, इन द सर्विस ऑफ द दिस लॉर्ड, मतलब अपनी सेवा। फिर वो मैंने लगाया धन को अपनी सेवा में, और वो तो मतलब तीर भी ऐसा इतना धन इतना ऑपुलेंस है वहां, कोई भी व्यक्ति गिर जाएगा वहां। तो भगवान ने न्याय किया, इसने कुत्ते को मारा, एक ऐसे जीव आत्मा को मारा जिसका कोई कर्म नहीं था, भगवान ने इसको वो बना दिया जो नाम अगला इसकी योनि क्या बनने वाली है। तो भगवान ने ऐसे, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलनी है कि जो चार वर्ण है, चार आश्रम है, ये सारे भगवान से आए। तो न शूद्र को नीचा समझो, न किसी कुत्ते को नीचा समझो, सबको क्या समझो? माम एव अंशः जीव लोके जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, इस सनातन पृथ्वी पर सनातन जीवात्मा सभी मेरे अंश हैं। अगर ये सोच करके कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो कोई हानि थोड़ी प्रणाम करने में। ये जरूरी थोड़ी है कि मैं खाली सीनियर डिवोटी को प्रणाम करूंगा, प्रभु जी आपने बहुत अच्छा क्लास दिया, मैं आपको 10 बार प्रणाम करूंगा। प्रणाम तो किसी को भी किया जा सकता है, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में विराजमान। तो प्रणाम करने में आपको कमर का दर्द है या कोई प्रॉब्लम है वो अलग बात है, कम से कम मन से प्रणाम कर सकते हैं हर भक्त को, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, प्रभु आपके हृदय में हरे कृष्णा। ऐसा भाव रखे तो किसी के प्रति अपराधी नहीं बनेगा। फिर काहे को सोचना कि मैंने इनके साथ गलत कर दिया, इनके साथ अच्छा कर दिया, सबके साथ समान दृष्टि आएगी। तो इस यति सन्यासी होने के बाद भी ये दृष्टि नहीं आती है, तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कम से कम जिस स्थिति में है, चाहे किसी भी आश्रम में रहे, किसी भी वर्ण के हों, बस भगवान हमको तभी पसंद करेंगे जब हम निर्मल हृदय के होंगे। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपटी लोग नहीं पसंद, मुझे कौन पसंद है? बिल्कुल सरल व्यक्ति, जैसा बोले गुरु आज्ञा समझ कर सेवा करते रहे, प्रसन्नचित होकर के प्रीति पूर्वक। हरे कृष्ण। अभी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं जी, तो राक्षस तो प्रवृत्ति है ना किसी की, किसी व्यक्ति ने, मैंने अभी तो बोला किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि वो व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति का है या फिर वो कैसी प्रवृत्ति का है। तो जाति ब्राह्मण तो था कि जाति से ऋषि विशर्वा की संतान और केकसी माता की संतान बना रावण, परंतु केकसी राक्षसनी थी और ऋषि विशर्वा ऋषि ब्राह्मण थे। तो ऋषि की संतान के कारण उसमें तो माता के दादा गुण है और गुणों के कारण वो राक्षस प्रवृत्ति का बना। तो जाति से ब्राह्मण था, परंतु वो ये वाला ब्राह्मण है श्याम दमन तपस्वी वाला, वो इतना शुद्ध होता तो वो स्वभाव को लेकर थोड़ी भागता, वो शुद्ध नहीं था, उसके आंतरिक बहुत कमी थी। बाहर से उच्चारण बड़े बड़े करता था लेकिन अंदर से एकदम उसमें कमियां भरी पड़ी। तो इसलिए हमारे चिंतन में क्या चलता है ज्यादा जरूरी है। जैसे एक बार एक ब्राह्मण था और एक वैश्य थी। ब्राह्मण सदा ये चिंतन करता था, जो कि जाति ब्राह्मण था, पुजारी था, और वो सोचता था कि कब टाइम मिले तो एक लख हीरा नाम की वैश्य थी, जिसका कि 1 लाख हीरे लेने पर वो अपना संग करने देती थी। लख हीरा, लाख हीरा तो पास होते, लख हीरा, लख हीरा उसके पास लाख हीरा दे दो तब वो अपना संग दे देते, इतनी कॉस्टली प्रोस्टिट्यूट। तो ब्राह्मण सोचता था कि बड़ा डोनेशन आता है, किसी दिन सारा डोनेशन लेके भाग जाओ, लक हीरा को कहूंगा ले लो और मुझे अपना संग करने दे। चिंतन किसका चल रहा था? बढ़ता रामायण था, रामायण का पाठ भागवत, परंतु लक्ष्य हीरा का चिंतन था। और लक्ष्य हीरा जो थी, लक्ष्य हीरा वो सदा किसका चिंतन करती थी? किसी दिन ऐसा आएगा मैं कहां फंसती हूँ, कौन सी योनि में फंसती हूँ, कौन सा दिन आएगा जब मैं ना ठाकुर जी का भजन करूंगी, ब्राह्मण की जैसी योनि में आऊंगी, जप करूंगी, कीर्तन करूंगी, अगरबत्ती करूंगी, भगवान को दिया करूंगी, रामायण पढ़ूंगी, हे प्रभु कौन सी योनि में डाल दिया, कौन सी जगह फंसा दिया है, लेकिन इस पेट को चलाने के लिए मुझे इस काम को करना पड़ता है। तो इस तरह से अभी वहां भूकंप आया, भूकंप आया तो दोनों के प्राण निकले, ब्राह्मण के भी और उसी के सभी मरे। जब ऊपर पहुंचे तो निर्णय हुआ, उन्होंने कहा कि वैश्य को कि आप तो चले जाओ स्वर्ग में, और ब्राह्मण को कहा आप चले जाओ नरक। तो ब्राह्मण बोला कि कंफ्यूजन प्रभु, कंफ्यूजन केवल चेक कर लीजिए आप, आई थिंक आर यू हैव अ टीम में एक इतनी जल्दी लोकेशन निर्णय लेना है तो जल्दी नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ऊपर चला गया, ब्राह्मण नहीं आ रहा, शरीर जल चुका ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण जो शरीर को ब्राह्मण बोला हो गया, इस सचिदन आत्मा लेकर के वो लेके गया अपने शामिल दूसरे शरीर को, तो शरीर को लेकर पहुंच रहा है, मैं ब्राह्मण था, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने ठाकुर जी को अगरबत्ती करी, मैंने दिया किया, हाँ चिंतन किसका किया, कहा कि मतलब प्रभु, कहा देखो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ मेरे भक्त ने बनाया है, उसका मतलब है भावना कैसी है, मैंने ये नहीं बनाया, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण क्रिया संघ, क्रिया कैसी, क्रिया हो सकता है भक्त की क्रिया हो, लेकिन भावना हो सकता है राक्षस, तो क्रिया से तो ब्राह्मण था रावण, लेकिन वो भावना से राक्षस, इसी के कारण वो ऐसा है। किसी संप्रदाय में नहीं है, ये सभी वैष्णव है, वैष्णव संप्रदाय से ऊपर है, संप्रदाय मतलब सभी, एक्चुअली सारी संप्रदाय कृष्ण से आ रहे हैं, तो अगर हम देखा जाए तो कृष्ण संप्रदाय में ही आते हैं, संप्रदाय बनी है कलयुग के लिए, चार संप्रदाय बनाई गई है, चार द्वारी संप्रदाय कलयुग के लिए बनाई गई है, कलयुग में इन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। देखा जाए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी को ज्ञान दिया और चार कुमारों को ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिया तो वो शिक्षा परंपरा है, तो शिक्षा जिन्होंने जिनसे भी, जैसे ध्रुव महाराज ने किससे ली शिक्षा, नारद मुनि से ली, तो नारद मुनि कौन से संप्रदाय में, तो इसी में आते ब्रह्मा जी के पुत्र, तो ब्रह्म गौड़िया मध्य संप्रदाय, लेकिन हम उसे गौड़िया या माधव संप्रदाय नहीं कह सकते, क्योंकि माधवाचार्य तो कलयुग में है, गौड़िया वचेतन महाप्रभु तो कलयुग में प्रकट हुए, तो ये खाली ब्रह्म संप्रदाय कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, नारद से ध्रुव ने ज्ञान लिया, नारद से प्रहलाद ने ज्ञान लिया, तो जो शिक्षा जान से लेते हैं वही संप्रदाय, और जिस जिसने जैसे ज्ञान लिया। अब विभीषण का जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी से लिए डाले, विभीषण आदि ने ब्रह्मा की तपस्या करी और ब्रह्मा जी से मांगा कि ब्रह्मा जी आपने कृपा करें, ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान प्रदान किया, भगवान की भक्ति किया, तो ब्रह्म संप्रदाय में आया। और जिसने श्री लक्ष्मी जी से ज्ञान प्राप्त किया वो लक्ष्मी संप्रदाय, हनुमान जी का पता नहीं, बता नहीं सकता, हनुमान जी से पूछना पड़ेगा, प्रभु जी बता सकते हनुमान जी कैसे संप्रदाय में बांध नहीं सकते वैसे किसी वैष्णव को, लेकिन फिर भी जैसे कि रामानुज संप्रदाय कहते हैं कि वो रामानुज संप्रदाय भगवान राम लक्ष्मण है, और हमारी संप्रदाय में वैसे जो माधवाचार्य है उनको भी बताया जाता है हनुमान जी का अवतार है, तो माधवाचार्य हनुमान का अवतार है, तो वो भी ब्रह्म संप्रदाय, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसी में हमारी संप्रदाय, अब ये नहीं कह रहे हम दिव्यांग ज्यादा प्रमाणिक है, भगवान स्वयं प्रकट, बाकी मुझे ज्यादा डिटेल मालूम है कौन किस संप्रदाय, और मैं निर्णय ले भी नहीं सकता हूँ, हनुमान जी महाराज हो गए मेरे को संप्रदाय का बता रहे पढ़ाई करता हूँ मैं बता नहीं सकता, पर ऐसा देखा जाए तो हरिदास ठाकुर भी इसी संप्रदाय में आते हैं, जो कि ब्रह्मा स्वयं है, और ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर भी इसी संप्रदाय में आए, हनुमान जी खुद माधवाचार्य बन के आए, पवन पुत्र है माधवाचार्य, तो सब ज्यादातर इसी संप्रदाय। यस सर, कलयुग में बताया गया कि इति षोडश नामनम कलि कल्मष नाशनम, मन की शुद्धि, मन का जो कल्मष उसका नाश करना, और जो हमारे हृदय की कल्मष उसका नाश करना, उसके लिए एक ही तरीका है, इति षोडश नामनम कलि कल्मष नाशनम नत पर तरोपाया सर्वेदेश, सारे वेदों का ये दृष्टांत है, सारे वेदों का ये उदाहरण है, सारे वेदों ने दर्शाया है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो अपने मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, अपने हर एक चित्त की शुद्धि कर सकता है, आत्म शुद्धि करता है और भगवत धाम चला जाता है, तो इसीलिए हमारे गौड़ी विष्णु संप्रदाय में हम देखते हैं हमारे पूर्वज आचार्य भी, हम स्वयं भगवान
गौरंग महाप्रभु जो अल्टर नक्षत्र महाप्रभु, उन्होंने स्वयं आकर के हरे कृष्ण महामंत्र स्थापित किया, सभी को हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो सबसे सरल विधि है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और उसी से हम सब कुछ शुद्ध कर सकते हैं। और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र को समझने के लिए हम ये शास्त्र भगवद गीता और श्रीमद भागवत को पढ़े तो शुद्ध कर सकते।
शारीरिक शुद्धि के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हम भगवान से समझ जाए और जुड़ सके, जिनसे क्या चीजें हमें खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए?
तो ये एक टाइप एक तो आपने सारा पूरा इस्कॉन का फोरम खड़ा कर दिया जिसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे कोर्स होता है डिस्कवर योर सेल्फ, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे प्रभु जी आपका, आप कर सकते हैं। तो प्रभु जी का नाम लिख लीजिए, पूरी सेमिनार अटेंड करिए, उसमें सारी चीजें होती है, 7 दिन बताए जाते हैं। वैसे सात्विक रहना सब चाहिए। अगर आप भगवत गीता का अध्याय पढ़ेंगे 13वां अध्याय है, तो उसमें बताया गया सत्वगुण रजगुण तमोगुण कैसे है, और 7वें अध्याय में बताया गया, 18वें अध्याय में बताया गया किस प्रकार से व्यक्ति सत्वगुणी व्यक्ति क्या खाता है। वो चीजें जो भगवान खाते हैं हम वही खाते हैं ना, जैसे पत्रम पुष्पम फलम, भगवान पत्ते खाते हैं फल खाते हैं, भगवान मांस नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, चाय नहीं पीते, जो भगवान नहीं खाते वो हम नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि पत्ता खाने वाले को या सब्जी खाने वाले को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जो मांस खाता है उसको भी पाप लगता है, जो सब्जी खाता है उसको भी पाप लगता है, क्योंकि दोनों ही जीव आत्मा है, पेड़ भी और जानवर भी। जो जानवर को खाता है उसे भी पाप लगेगा, जो पत्ते खाता है उसको भी पाप लगेगा, परंतु जो पत्ते की सब्जी लेकर के भगवान को भोग लगाता है, जो भगवान खाते हैं, तो फिर वो पाप रहित हो जाता है। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा नष्टो मुच्यन्ते सर्वकल विषाम जन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्मकारणा। जो अपने लिए भोजन बनाते हैं वो सच में पाप खाते हैं, लेकिन जो मेरे लिए भोजन बनाते हैं वो पाप रहित हो जाते हैं। तो इसलिए सब्जी में भी पाप लगता है, जीवात्मा है, पेड़ों को काटना, पेड़ों की सब्जी लाना, परंतु वो जब भगवान को भोग लग जाती है उसके बाद वो पाप रहित हो जाती है। इसलिए हम भगवान को वही भोग लगा सकते हैं जो भगवान खाते हैं। अभी आदमी बोले तो फिर हम मांस का भोग लगा के खा लेंगे, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा अंडम लेसम प्याजम मांसम, भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्ति। तो इसलिए ये चार चीजें भगवान को, ऐसे सात्विक खाना खाएं, सात्विक गुण अपने अंदर अर्जित करें, गीता का पाठ करें, जाप करें। और
अगर इंसान जानवर को मारता है तो उसको पाप लगता है, लेकिन जानवर जानवर को मारता है, इंसान को मारता है तो उसे पाप नहीं लगता।
हाँ, क्योंकि भगवान ने नियम बनाया, वेदों में लिखा है जीवो जीवस्य जीवनं, जीव ही जीव का जीवन है, कौन से जीव का कौन सा जीवन है ये देखना पड़ेगा। मनुष्य के लिए बनाई सब्जी, कहते हमने बताया सब्जी भी जीवन है, मनुष्य के लिए सब्जी, शेर के लिए मांसाहार, गाय के लिए घास। अब गाय समझदार है, गाय को बताया गया तुम्हें घास खानी है, ठीक है, अब गाय के सामने आप मांस डालो क्या करेगी, खाएगी, उसे मालूम है मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन जो ये मनुष्य योनी है जहां पर द्वंद चलता है क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो एक व्यक्ति मिले थे, मैंने उनसे पूछा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, कहते मैं मौकाटेरियन हूं, जैसा मौका पड़ता है वैसा खाना। तो भक्तों को कैसा होना चाहिए, ना ही शाकाहारी ना ही मांसाहारी, प्रसादहारी होना चाहिए, जो भगवान खाएंगे वो ही खाएंगे।
बकरी सारे जीवन घास खाती है लेकिन उसे फिर भी पुण्य नहीं मिलता, शेर मांस खाता है उसे फिर भी नहीं मिलता, तो ऐसा ऐसा क्या डिफरेंस है,
डिसाइड किसने किया पुण्य मिलता, आपने डिसाइड किया पुण्य मिलता।
कृष्ण भगवान बोलते हैं,
कहां बोल रहे हैं
भगवान गीता की,
दिखाओ कहां बोल रहे हैं, लाओ इधर जाओ। वीडियो की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो में दिखाएंगे कि द्रौपदी के 18 पति थे तो हम थोड़ी मान लेंगे, पांचाली पांच सके हम तो शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं ना। तो वीडियो पे मचाओ, हमने बताया टीवी जो है ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसको घर से जितनी जल्दी निकालेंगे उतनी जल्दी आप सात्विक बनेंगे। भगवान जब आए थे गोकुल में तो वहां पर पूतना नाम की राक्षसी जो खेचरी थी, खेचरी मतलब हवा से चलने वाली, तो हवा में उड़कर के आती थी, पूत ना नाम था, क्योंकि एक भी पूत ना छोड़ूंगी ना, हरियाणवी होते ना, पूत ना छोड़ूंगी, पूत ना, एक भी पूत ना छोड़ूंगी, तो उसका नाम था पूत ना। सभी बच्चों को मारने के लिए आई, सबको खा रही थी, भगवान के पास गई, लेकिन अपना रूप परिवर्तित किया, सुंदर स्त्री बनकर के आती, आकर के क्या किया उसने, भगवान को मारना चाहा। ऐसे ही टीवी पहले मोटा होता था, अभी LCD बन गया, बहुत सुंदर बन गया, सुंदर स्त्री बनकर के प्रवेश कर गया घर के अंदर, लेकिन वो क्या कर रहा है, पूतना तेरे बच्चे ना छोड़ूंगी, संस्कार खराब करके छोड़ू। मैंने तो बताया धाम जाना चाहिए भक्तों के साथ में घर ही कथा करने के लिए, भागवत को और ध्यान सुनने के लिए, सीनियर डिवोटी महाराज उनके साथ जाएंगे कथा सुनेंगे तो थोड़ा सा भागवत के प्रति और रुचि आएगी। घर में भागवत पढ़ते रहेंगे, मक्खी भी भागवत का आगे पीछे होती रहती है, भक्त बनती है। तो भागवत को सीखना है, भागवत का स्थान है, भागवत का गृह भक्त भागवत का स्थान है, भागवत के स्थान पर जाकर भागवत भक्तों से सीखना चाहिए, भागवत समझने लगते। तो भागवत समझने के लिए भागवत भक्ति शरण के लिए हम धाम चले। अच्छा जब वो वाले महाराज उस यात्रा में चलो कुछ भागवत चर्चा कर लेंगे, धाम के लिए थोड़े जा रहे हैं हम, भागवत से चले तो वो भागवत कथा के लिए हरि कथा सुन रहे हैं, तो हरि भक्त हरि कथा में ही रुचि लेता है।